एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं जो अंदर तक छू जाती है। नाम है लेटिंग गो, द पाथवे ऑफ सरेंडर और लेखक हैं डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपनी भावनाओं को, एहसास को दबाने या उनसे लड़ने के बजाय उन्हें महसूस करें और उनकी ऊर्जा को बस जाने दें। इससे हमें भावनात्मक सुकून मिलता है, एक तरह की आज़ादी।
हाँ नमस्कार, और आज के समय में मतलब जिस तरह का माहौल है, तनाव, चिंता, भागदौड़, इसकी ज़रूरत शायद पहले से कहीं ज़्यादा है। हम सब कहीं ना कहीं इन भावनाओं के बोझ तले दबा हुआ महसूस करते हैं, है ना?
बिल्कुल।
तो ये किताब एक अलग रास्ता दिखाती है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीका है समझने का कि कैसे इन भावनाओं से सचमुच में असल में मुक्त हुआ जाए। तो आज की हमारी ये चर्चा, इसका मिशन यही है समझना कि ये लेटिंग गो या जाने देना, ये है क्या चीज़, ये काम कैसे करती है और सबसे ज़रूरी, ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकती है। हम देखेंगे कि लेखक कैसे भावनाओं को सिर्फ मन का खेल नहीं मानते बल्कि एक तरह की एनर्जी, ऊर्जा मानते हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प नज़रिया है।
हाँ, और इस नज़रिए को समझने के लिए ना पहले लेखक को जानना ज़रूरी है। डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस 1927 से 2012, ये कोई आम मनोचिकित्सक नहीं थे। वो एक जाने माने साइकाट्रिस्ट तो थे ही, साथ में चेतना पर, कॉन्शियसनेस पर रिसर्च करने वाले और एक स्पिरिचुअल टीचर, आध्यात्मिक गुरु भी थे। उनके काम में आपको विज्ञान और अध्यात्म का एक बहुत ही अनूठा, एक यूनिक मेल देखने को मिलता है।
ये बात तो है, ये वाकई उन्हें खास बनाती है। ज़रा सोचिए, एक तरफ 50 साल से ज़्यादा का क्लिनिकल साइकेट्री का अनुभव, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के लाइफ मेंबर, और दूसरी तरफ 1965 में उन्हें गहरा पर्सनल आध्यात्मिक अनुभव हुआ जिसने उनकी पूरी सोच, पूरा नज़रिया ही बदल दिया।
सही का।
उन्होंने तो वो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस भी बनाया, मतलब चेतना का नक्शा, जिसमें उन्होंने भावनाओं और चेतना के अलग अलग लेवल्स को एनर्जी के आधार पर मापा। इसका जिक्र उनकी एक और मशहूर किताब पावर वर्सेस फोर्स में है।
बिल्कुल, और लेटिंग गो को उनकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल मतलब व्यावहारिक किताब माना जाता है। ये सिर्फ उनके सालों के रिसर्च या क्लिनिकल काम का निचोड़ नहीं है बल्कि ये उनके अपने जीवन के बदलावों का भी सार है। सुनने में आता है कि इसी लेटिंग गो तकनीक से उन्होंने खुद कई गंभीर बीमारियों को भी मात दी थी।
अच्छा।
हाँ, तो ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये जीवी सच्चाई है और शायद इसी वजह से ये इतनी असरदार लगती है।
चलिए अब सीधे किताब पर आते हैं। अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो ये इमोशनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम, मतलब भावनात्मक और आध्यात्मिक आज़ादी पाने की एक प्रैक्टिकल गाइड है। और इसका जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये कि हमारे ज्यादातर दुख की जड़ बाहर के हालात नहीं हैं, बल्कि उन हालातों पर हमारी अपनी अंदरूनी प्रतिक्रियाएं हैं, हमारे रिएक्शंस, और वो भावनाएं हैं जिन्हें हम अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं।
बिल्कुल, और हॉकिंस का जो मुख्य तर्क है वो ये कि हम आमतौर पर अपनी मुश्किल भावनाओं से निपटने के लिए तीन तरीके अपनाते हैं, और मजे की बात यह है कि तीनों ही कारगर नहीं है। पहला है दबाना, सप्रेशन, मतलब भावना को महसूस ही न करना, उसे अंदर कहीं दबा देना।
हाँ।
दूसरा व्यक्त करना, एक्सप्रेशन, जैसे गुस्से में चीखना, चिल्लाना या रोना धोना। और तीसरा है बचना, एस्केप, मतलब ध्यान भटकाने के लिए खुद को किसी और चीज में लगा लेना, जैसे टीवी देखना, ज्यादा खाना या बस काम में डूब जाना।
पर हॉकिंस कहते हैं कि ये तरीके भावना को खत्म नहीं करते बल्कि उसे और पक्का कर देते हैं। दबाने से अंदर प्रेशर कुकर जैसा हाल हो जाता है।
सही।
व्यक्त करने से अक्सर रिश्ते बिगड़ जाते हैं और वो भावना लौट लौट कर आती है, और बचने से हम असल मुद्दे का सामना करने से कतराते रहते हैं। तो फिर रास्ता क्या है?
यहीं पर हॉकिंस समर्पण की तकनीक या लेटिंग गो पेश करते हैं। और देखिए, समर्पण का मतलब यहाँ हार मान लेना या गिव अप करना नहीं है, बिल्कुल नहीं।
अच्छा।
इसका मतलब है जो भी भावना उठ रही है, जो एहसास हो रहा है, उसे बिना किसी रोक टोक के, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बिना उसका विश्लेषण किए, बस पूरी तरह महसूस करना, जैसे शरीर में कोई लहर उठी हो उसे उठने देना और फिर उसे अपने आप शांत हो जाने देना। ये उस भावना के पीछे जो एनर्जी है ना, उसको जाने देना है।
ये सिर्फ राहत नहीं देता बल्कि हमें चेतना के, कॉन्शियसनेस के ऊंचे स्तरों की तरफ ले जाता है। किताब के जो शुरुआती अध्याय हैं उनमें हॉकिंस इसी तकनीक की नींव रखते हैं। वो समझाते हैं कि भावनाएं, इमोशंस, सिर्फ हमारे मन की सोच या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो असल में ऊर्जा क्षेत्र हैं, एनर्जेटिक फील्ड्स। हर भावना की, चाहे वो डर हो, गुस्सा हो, खुशी हो, उसकी अपनी एक खास वाइब्रेशन, एक ऊर्जा होती है।
और यहीं पर ये लेटिंग गो की प्रक्रिया और भी दिलचस्प हो जाती है। ये भावनाओं से पीछा छुड़ाना नहीं है, बल्कि उनके प्रति जो हमारा अंदरूनी विरोध है, जो रेजिस्टेंस है, उसको छोड़ना है। इसकी तीन आसान से कदम बताए गए हैं। पहला, जागरूक होना, पहचानना कि आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं।
ठीक है।
दूसरा, बिना जज किए महसूस करना उस भावना को, शरीर में महसूस होने देना, चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, उसे बदलने की कोशिश किए बिना। और तीसरा, समर्पण, उस भावना के पीछे जो ऊर्जा है उसे जाने देना, उसे समर्पित कर देना। ये थोड़ा सुनने में एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, पर प्रैक्टिस से समझ आता है।
और फिर लेखक इन तीन अप्रभावी तरीकों, दबाना, व्यक्त करना, बचना, की तुलना लेटिंग गो से करते हैं। वो बताते हैं कि क्यों सिर्फ लेटिंग गो ही भावना की जड़ यानी उसकी ऊर्जा को शांत करता है, बाकी तरीके तो बस ऊपर ऊपर काम करते हैं।
बिल्कुल,
ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए खरपतवार को ऊपर से काट दे लेकिन जड़ वहीं रहे।
हाँ, बिल्कुल।
हॉकिंस भावनाओं की जो शारीरिक रचना है उस पर भी जोर देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे हमारे विचार, हमारे थॉट्स भावनाओं को ट्रिगर करते हैं और फिर वो भावनाएं हमारे शरीर में महसूस होती हैं, जैसे डर से पेट में खिंचाव आता है,
होता है,
या गुस्से से जबड़े भिंज जाते हैं। जब हम नेगेटिव भावनाओं को लगातार दबाते हैं तो ये जमा हुई ऊर्जा, ये ब्लॉक्ड एनर्जी शरीर में बीमारियों या मानसिक तनाव के रूप में सामने आ सकती है। तो लेटिंग गो इस अटकी हुई ऊर्जा को रिलीज करने का एक तरीका है। ये मन और शरीर के गहरे कनेक्शन को दिखाता है। इसके बाद किताब का सफर और गहरा होता जाता है। हॉकिंस हमें भावनाओं के पूरे स्पेक्ट्रम की, पूरी रेंज की यात्रा पर ले जाते हैं और इसे उन्होंने चेतना के नक्शे यानी मैप ऑफ कॉन्शियसनेस के जरिए समझाया है। ये सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर असल में ये भावनाओं को उनकी एनर्जी के लेवल के हिसाब से समझने का एक फ्रेमवर्क है। सबसे कम ऊर्जा वाली अवस्था जैसे शर्म या शेम से लेकर सबसे ऊंची अवस्था जैसे शांति और ज्ञानोदय, एनलाइटनमेंट तक।
हाँ, और ये नक्शा वाकई आंखें खोलने वाला है। हर लेवल सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया, एक वर्ल्ड व्यू है।
और जीने का तरीका भी, जैसे सबसे निचले स्तरों पर है उदासीनता, एपथी, दुख, ग्रीफ और भय, फियर।
उदासीनता में इंसान खुद को बिल्कुल बेबस, हेल्पलेस महसूस करता है, कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं होती। दुख में इंसान अतीत की बातों में, किसी नुकसान में अटका रहता है, और भय में भविष्य की चिंताओं में जीता है। हॉकिंस का सुझाव है कि इन अवस्थाओं से निकलने के लिए हमें इन भावनाओं को पूरी तरह महसूस करके उनकी ऊर्जा को जाने देना होगा, ना कि उनसे जुड़े नेगेटिव विचारों को और हवा देनी होगी। मतलब डर को महसूस तो करना है, पर पता नहीं क्या होगा वाले विचारों के जाल में नहीं फंसना है।
फिर आते हैं कुछ ऐसे स्तर जो थोड़े ज्यादा ऊर्जावान लगते हैं पर वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जैसे इच्छा, डिजायर, क्रोध, एंगर और गौरव, प्राइड। इच्छा, डिजायर हमें हमेशा किसी चीज की कमी का एहसास कराती रहती है, काश मेरे पास वो होता, काश ऐसा हो जाता।
हाँ।
क्रोध, गुस्सा अक्सर अंदर छिपे किसी डर, चोट या नाइंसाफी के एहसास से उपजता है। और गौरव, प्राइड यानी अहंकार, वो बहुत नाजुक होता है, जरा सी आलोचना हो ही नहीं कि टूट सकता है। यहाँ हॉकिंस सिखाते हैं कि इन भावनाओं की ऊपरी सतह पर रिएक्ट करने के बजाय उनके नीचे दबी जो असली ऊर्जा है उसे कैसे पहचाने और उसे सरेंडर करें। जैसे गुस्से के नीचे छिपे डर या बेबसी के भाव को महसूस करके जाने देना।
और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जब हम इन निचली और ये जो जोरदार अवस्थाएं हैं इनकी ऊर्जा को जाने देना सीखते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से नेचुरली ऊंची अवस्थाओं की ओर बढ़ने लगते हैं, जैसे साहस, करेज, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस और प्रेम, लव।
अच्छा,
साहस का मतलब ये नहीं कि डर लगेगा ही नहीं, साहस का मतलब है डर को महसूस करने और उसके बावजूद जरूरी कदम उठाने की इच्छा रखना। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस का मतलब है चीजों को बदलने की जिद छोड़ना और उन्हें वैसे ही स्वीकार करना जैसी वो हैं। ये हार मानना नहीं है,
ये वास्तविकता को स्वीकारना है। और प्रेम, प्रेम यहां सिर्फ रोमांटिक फीलिंग नहीं है, बल्कि एक बिना शर्त वाली स्वीकार करने वाली अवस्था है, एक अनकंडीशनल स्टेट है। ये सब लेटिंग गो की प्रैक्टिस से धीरे धीरे विकसित होते हैं।
लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है जैसा लगता है। किताब उन रुकावटों, उन बाधाओं की भी बात करती है जो हमें लेटिंग गो करने से रोकती हैं। एक बड़ी बाधा है हमारा अहंकार, हमारा ईगो। ईगो अपनी जानी पहचानी इमोशनल स्टेट से चिपके रहना चाहता है, क्योंकि वही हमारी पहचान बन जाती है। मैं तो हमेशा गुस्से में रहती हूँ, या मैं तो बहुत डरपोक हूँ, ऐसी पहचानों को छोड़ने में डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद को ही खो देंगे।
ये बात बहुत सच्ची लगती है ना? और समाज भी कई बार हमें भावनाओं को दबाना सिखाता है। लड़के रोते नहीं, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं, तो हम अपनी भावनाओं को खुलकर महसूस करने से कतराते हैं। और कुछ भावनाएं जैसे खुद को पीड़ित समझना या गुस्सा करना, वो एक तरह का नशा बन सकती हैं, एडिक्टिव हो सकती हैं।
हाँ, ये भी होता है।
उनसे एक अजीब किस्म का संतोष मिलता है, भले ही वो हमें नुकसान पहुंचा रही हो। हॉकिंस इन बाधाओं को पहचानने और धीरे धीरे इनसे पार पाने के तरीके भी बताते हैं, मुख्य रूप से लगातार समर्पण के अभ्यास से, लेटिंग गो की प्रैक्टिस से।
अब आते हैं किताब के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। जो तीसरा भाग है वो बताता है कि इस लेटिंग गो की तकनीक को जीवन के अलग अलग एरियाज, हेल्थ, पैसा, करियर, रिश्ते और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल ग्रोथ में कैसे इस्तेमाल किया जाए।
हाँ, ये बहुत उपयोगी है, जैसे रिश्तों में पुरानी शिकायतों को, उम्मीदों को या जलन की भावनाओं को पकड़कर रखने के बजाय उन्हें महसूस करके जाने देना। इससे रिश्ते ज्यादा स्वस्थ और हल्के हो सकते हैं।
हाँ, काम की जगह पे तो बहुत होता है।
बिल्कुल, नाकामी का डर, दूसरों से अप्रूवल पाने की जरूरत या कॉम्पिटिशन की भावना, इन सबको छोड़ना। इससे ना सिर्फ तनाव कम होता है, बल्कि हम ज्यादा क्रिएटिव और शांत होकर काम कर पाते हैं।
स्वास्थ्य के मामले में भी इसका गहरा असर हो सकता है। जैसा आप कह रहे थे, कई बार शारीरिक बीमारियों के पीछे लंबे समय से दबी हुई भावनाएं होती हैं। जैसे कोई पुरानी बीमारी है या दर्द है, तो उसके प्रति जो हमारा इमोशनल रेजिस्टेंस है, जैसे डर, गुस्सा या निराशा, उसको सरेंडर करने से, उसको जाने देने से शरीर की हीलिंग प्रोसेस में मदद मिल सकती है। ये मेडिकल इलाज की जगह नहीं लेता, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके साथ मिलकर काम कर सकता है, एक सप्लीमेंट की तरह।
और व्यसनों या किसी चीज की लत, एडिक्टिव बिहेवियर्स के मामलों में भी अक्सर किसी लत के पीछे कोई गहरा भावनात्मक दर्द या खालीपन छिपा होता है। सिर्फ विल पावर के जोर पर, इच्छा शक्ति के जोर पर लत छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेटिंग गो उन अंदरूनी भावनाओं को एड्रेस करने में मदद करता है जो उस लत को ट्रिगर करती हैं। जैसे अगर किसी को तनाव में ज्यादा खाने की आदत है, तो वो तनाव की भावना को महसूस करके उसे जाने देने का अभ्यास कर सकता है, बजाय इसके कि वो सीधे खाने की तरफ भागे। ये जड़ पर काम करने जैसा है।
इस पूरी बातचीत से ना कुछ बहुत गहरे और जरूरी संदेश उभर कर आते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा, कंट्रोल का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम अपनी भावनाओं को, अपने जीवन को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं और इसी कोशिश में बहुत दुख पाते हैं। समर्पण, सरेंडर, असल में इस कंट्रोल को छोड़ने की कला है। ये सुनने में उल्टा लग सकता है, पर छोड़ने में ही असली ताकत है।
दूसरा अहम संदेश है, भावनाएं ऊर्जा हैं, वो हमारी पहचान नहीं है। हम अक्सर खुद को अपनी भावनाओं से जोड़ लेते हैं, मैं दुखी हूं, मैं गुस्से वाला हूं। हॉकिंस हमें याद दिलाते हैं कि हम भावनाएं हैं नहीं, हम उन्हें अनुभव करते हैं। वो आती हैं और चली जाती हैं जैसे आसमान में बादल। ये नजरिया हमें उनसे थोड़ी दूरी बनाने और उन्हें आसानी से जाने देने की क्षमता देता है।
तीसरा है उपस्थिति और स्वीकृति की उपचार शक्ति, हीलिंग पावर ऑफ प्रेजेंस एंड एक्सेप्टेंस। हम अक्सर चीजों को ठीक करने, बदलने या उनसे लड़ने में लगे रहते हैं। हॉकिंस कहते हैं कि सच्चा उपचार, सच्ची हीलिंग तब होती है जब हम जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं उसे बिना किसी शर्त के पूरी तरह स्वीकार करते हैं और उसके साथ बस मौजूद रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ये भारत की जो ध्यान की परंपरा है, माइंडफुलनेस, साक्षी भाव, उससे कितनी मिलती जुलती बात है।
बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण बात, हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो हमारे अनुभवों को हमारी सचेत इच्छा शक्ति, कॉन्शियस विल पावर से कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। हम चाहे कितना भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, अगर अंदर गहरे भावनात्मक पैटर्न दबे हुए हैं तो वही हमारे जीवन की दिशा तय करेंगे। लेटिंग गो उन गहरे पैटर्न्स तक पहुंचने और उन्हें एक तरह से पिघलाने का रास्ता दिखाता है। इसीलिए सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें करने से ज्यादा जरूरी है अंदर की सफाई करना।
हाँ, और ये सफाई कोई मुश्किल साधना नहीं है जिसे कहीं जाकर करना पड़े। ये रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास करने वाली चीज है। हर बार जब कोई मुश्किल भावना उठे तो वो झुंझलाहट का कारण नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का, आध्यात्मिक विकास का एक मौका बन जाता है। ये कर्म योग जैसा है, जीवन के हर अनुभव को अपने विकास के लिए इस्तेमाल करना।
और ये भी समझना जरूरी है कि चेतना का विकास एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, कोई एक दिन का चमत्कार नहीं। वो जो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो हमें दिखाता है कि ये एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है, जहां हम धीरे धीरे डर, गुस्से जैसी निचली अवस्थाओं से साहस, स्वीकृति और प्रेम जैसी ऊंची अवस्थाओं की ओर बढ़ते हैं। तो धैर्य और निरंतर अभ्यास, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जरूरी है।
और आखिर में ये समझना कि समर्पण सिर्फ नेगेटिव चीजों के लिए नहीं है। कई बार हमें अपनी पसंदीदा चीजों से, अपनी सफलताओं से, यहाँ तक कि अपने आध्यात्मिक अनुभवों से भी जो अटैचमेंट हो जाता है, जो जुड़ाव हो जाता है, उसे भी छोड़ना पड़ता है ताकि हम और आगे बढ़ सकें। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
इस किताब में ना कई ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो दिमाग में बस जाते हैं। कुछ पर बात करते हैं। जैसे जो तकनीक का बिल्कुल सार है, समर्पण का तंत्र सरल है। जब कोई भावना उठे तो उसका विरोध करने या उसे बदलने की कोशिश करने के बजाय बस उसे वहां रहने दे और उसके पीछे की ऊर्जा को जाने दे।
बिल्कुल, मतलब कहानी में मत उलझो कि ये भावना क्यों उठी, किसने क्या कहा, क्या हुआ। बस शरीर में जो सनसनी या ऊर्जा महसूस हो रही है उस पे ध्यान दो और उसे बह जाने दो। बहुत सिंपल।
एक और गहरा विचार, हम केवल उसी चीज के गुलाम हैं जिसे हम अपने मन में पकड़ कर रखते हैं। जिसे हम जाने देते हैं वो हमारे जीवन से अपनी पकड़ खो देता है।
ये दिखाता है कि शक्ति हमारे अंदर है ना? हम ही अपनी भावनाओं और विचारों को पकड़कर उन्हें ताकत देते हैं। जैसे ही हम वो पकड़ ढीली करते हैं, उनका असर कम हो जाता है।
और ये तो शायद सबसे क्रांतिकारी बात लगती है मुझे। प्रतिरोध ही भावना को बनाए रखता है, जिसका आप विरोध करते हैं वो बना रहता है।
ये हमारी आम सोच के बिल्कुल उलट है। हमें लगता है कि नेगेटिविटी से लड़ना चाहिए, उसे दबाना चाहिए, पर हॉकिंस कहते हैं कि लड़ने से वो और मजबूत होती है। जैसे दलदल में जितना हाथ पैर मारो उतना धंसते जाते हो। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ही बाहर निकलने का रास्ता है।
लोगों की जमा नकारात्मकता को मिटा सकता है।
इसका मतलब है कि बदलाव कभी भी संभव है। जरूरी नहीं कि सालों की प्रैक्टिस लगे। कभी कभी एक पल का गहरा समर्पण भी बहुत कुछ बदल सकता है। ये बहुत आशावादी, बहुत होपफुल नजरिया है।
और अंत में ये आध्यात्मिक पहलू, लक्ष्य एक आदर्श इंसान बनना नहीं है, बल्कि इस भ्रम से मुक्त होना है कि हम अपूर्ण हैं।
ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो दौड़ है ना, उससे निकालकर सेल्फ एक्सेप्टेंस की ओर ले जाता है। ये कहता है कि हम जैसे हैं ठीक हैं, बस हमें अपनी भावनाओं के बोझ को उतारना है ताकि हम अपनी स्वाभाविक शांति और पूर्णता को महसूस कर सकें। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पायरिंग है, पर सवाल वही है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे, प्रैक्टिकली कैसे करें?
पहली प्रतिक्रिया शायद लड़ने की होगी या चुप हो जाने की। लेटिंग गो कहता है एक पल रुकें, उस चोट या गुस्से की भावना को अपने सीने में या पेट में महसूस करें। उसे कोई नाम ना दें, बस महसूस करें। गहरी सांस लें और कल्पना करें कि वो ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल रही है। आप पाएंगे कि कुछ देर बाद आप ज्यादा शांत और समझदारी से बात कर पाएंगे। पुरानी बातों को बार बार याद करके कुड़ने के बजाय उन भावनाओं को जाने देने का अभ्यास करें।
और काम की जगह पर भी ये बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन देने से पहले डर लग रहा है, या किसी कॉलीग की सफलता से जलन हो रही है, या बॉस की डांट से बेइज्जती महसूस हो रही है। इन सभी भावनाओं को दबाने या उन पर रिएक्ट करने के बजाय उन्हें महसूस करके जाने दें। डर को महसूस करें और फिर भी प्रेजेंटेशन दें। जलन की ऊर्जा को जाने दें। आप पाएंगे कि आप ज्यादा आत्मविश्वास और कम तनाव के साथ काम कर पा रहे हैं। ये आपको ज्यादा इफेक्टिव बनाता है।
स्वास्थ्य के लिए, जैसा हमने पहले कहा, ये शारीरिक लक्षणों से जुड़े भावनात्मक बोझ को कम कर सकता है। अगर आपको कोई क्रॉनिक दर्द है तो दर्द के साथ उठने वाली निराशा, डर या गुस्से की भावनाओं पर ध्यान दें। क्या आप दर्द से लड़ रहे हैं? क्या आप उससे नफरत करते हैं? उस प्रतिरोध को महसूस करें और उसे जाने देने की कोशिश करें। ये दर्द को तुरंत गायब नहीं करेगा शायद, पर उसके साथ आपका रिश्ता बदल सकता है, जिससे शायद राहत मिले। बेशक डॉक्टरी सलाह लेना हमेशा जरूरी है, ये उसका विकल्प नहीं है।
हाँ बिल्कुल। और व्यसनों या बुरी आदतों के लिए ये ट्रिगर करने वाली भावनाओं पर काम करता है। जैसे अगर कोई बोरियत या अकेलेपन में स्मोकिंग करता है, तो अगली बार जब तलब उठे तो सिगरेट जलाने से पहले उस बोरियत या अकेलेपन की भावना को महसूस करे, उसे बस महसूस करे बिना भागे, देखें क्या होता है। शायद तलब थोड़ी कम हो जाए या उस भावना से निपटने का कोई और हेल्दी तरीका मिल जाए। ये विल पावर से ज्यादा टिकाऊ समाधान हो सकता है।
तो कुल मिलाकर इस किताब का सबसे बड़ा सबक मेरे लिए तो यही है कि भावनात्मक आजादी, इमोशनल फ्रीडम मुमकिन है, और उसका रास्ता लड़ने में नहीं बल्कि स्वीकार करने और जाने देने में है। ये सुनने में सरल लगता है पर इसमें बहुत गहराई है। हमारी असली प्रकृति, हमारा ट्रू नेचर शांति और जागरूकता है, जो भावनाओं के आने जाने के पीछे हमेशा मौजूद रहती है।
बिल्कुल, और मेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव ये रहा है कि इसने वो जो कंट्रोल करने की मानसिकता है ना, उसको चुनौती दी है। हम हमेशा सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी भावनाएं भी। ये किताब कहती है कंट्रोल छोड़ो, बस महसूस करो और जाने दो। ये अपने अंदर की दुनिया से रिश्ता बदलने जैसा है। इसकी सादगी ही इसकी ताकत है। एक छोटी सी तकनीक पर जीवन के हर पहलू पर असर डाल सकती है।
मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात हॉकिंस का वो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस था, भावनाओं को ऊर्जा के स्तर पर देखना और ये समझना कि कैसे समर्पण हमें स्वाभाविक रूप से चेतना के ऊंचे स्तरों की ओर ले जाता है। ये विज्ञान और अध्यात्म का ऐसा संगम है जो बहुत लॉजिकल और भरोसेमंद लगता है। ये वाकई में मुक्ति का, फ्रीडम का एक नक्शा सा पेश करता है।
सच में ये सोचने पर मजबूर करता है। हमने भावनाओं को जाने देने की बात की, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, पर क्या हो अगर हम अपने सबसे बड़े सपनों या जुनून से जुड़े पॉजिटिव तनाव या अटैचमेंट को भी जाने दें? क्या समर्पण वहां भी कोई ऐसा रास्ता खोल सकता है जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो? ये एक सवाल है जिसके बारे में सोचते रहना चाहिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।